जैसे ही ज़ोया ने अरमान के कंधे पर अपना सिर रखा, अरमान के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, पर अगले ही पल एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। अरमान मन ही मन सोच रहा था, जितना आराम करना है कर लो छोटी मालकिन, क्योंकि आज के बाद किसी तरह का आराम आपकी किस्मत में नहीं होगा। हम दोनों भाई आपकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना देंगे। आपको इसी ज़िंदगी में हम दोनों का एहसास कराएंगे। ना ही हम तुम्हें मरने देंगे और ना ही चैन से कभी जीने देंगे। वेल, छोटी मालकिन, गेम स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं आप कहाँ तक हम भाइयों की नफ़रत की आग बर्दाश्त करती हो। इतने में अरमान की सभी गाड़ियाँ एक ट्रैफिक जैम में फंस गईं और एकाएक चारों ओर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आने लगी। अरमान गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से बेहद डिस्टर्ब हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि ज़ोया की आँखें खुले या उसकी नींद ख़राब हो, क्योंकि ज़ोया को तकलीफ देने का हक तो केवल उन दोनों भाइयों का था। अरमान ने गुस्से से तेज़ा से कहा, जाओ जाकर ये हॉर्न की आवाज़ बंद कराओ, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। जाओ जाकर गाड़ियों के साथ साथ इनके मालिकों का भी मुंह बंद करवाओ, जल्दी। और एक और बात, अगर इनके शोर से छोटी मालकिन की नींद खुली तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। तेज़ा अपने बॉस के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसे पता था अरमान ठाकुर कुछ भी कर सकता था। अरमान ठाकुर को किसी का कोई डर नहीं था, हर रोज़ वो मौत के साथ खेलता था। तेज़ा ने गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गन से हवा में फायर कर दिया। जितने भी लोग हॉर्न बजा रहे थे वे सब डर के मारे अपनी ही सीटों के नीचे छुप गए। किसी ने भी अपना सर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की और एक ही पल में वहां ऐसी शांति हो गई मानो कोई लाइब्रेरी हो। दूसरी ओर ज़ोया की नींद बहुत पहले ही खुल चुकी थी और वो अरमान की धमकी भी सुन चुकी थी, लेकिन वो एक बार फिर आंखें बंद किए अरमान के कंधे पर अपना सिर रखे लेटी रही। उसने जानबूझकर आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसे पता था अगर वो जाग गई तो अरमान नहीं जाने कितनी लाशें यहां बिछाएगा। आखिर ये साइको मुझसे चाहता क्या है, ज़ोया ने मन ही मन सोचा। और आज उसने अरमान का नया नाम भी रख दिया था, साइको। वो अब उसे इसी नाम से बुलाएगी। ट्रैफिक जाम जल्दी ही क्लियर हो गया। किसी ने अरमान से पहले अपनी गाड़ी निकालने की हिम्मत नहीं की थी। जब तक अरमान की सारी गाड़ियां वहां से नहीं निकल गई थीं, कोई आगे नहीं बढ़ा था। कुछ ही देर में वे लोग ठाकुर मेंशन पहुंच चुके थे। ज़ोया ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जैसे ही गाड़ी रुकी, अरमान ने ज़ोया को अपनी गोद में उठा लिया और मेंशन के अंदर ले जाने लगा। जिस नर्स को अरमान ने हायर किया था वो भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। ज़ोया समझ गई थी कि वो अरमान की गोद में है। अचानक उसने जागने का नाटक किया और बोली, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ, छोड़ो मुझे। अरमान ने ज़ोया से कुछ नहीं कहा और एक खतरनाक मुस्कान दी और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। वो जल्दी ही मेन गेट पर पहुंच गया। ज़ोया ने देखा अरहम पहले से गेट पर खड़ा है। अरमान ने जाते ही ज़ोया को सीधा अरहम की गोद में दे दिया, जैसे वो कोई इंसान नहीं कोई खिलौना हो, कभी उसकी गोद में तो कभी उसकी गोद में। अब ज़ोया अरहम की गोद में थी। ज़ोया हैरानी से कभी अरमान को देख रही थी तो कभी अरहम को। अरहम ज़ोया को उसी लास्ट फ्लोर पर ले गया जहां वो पहले थी। ज़ोया ने कमरे में जाकर देखा तो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। वहां जितने फोटो थे वे सब हटा लिए गए थे। अब वहां केवल बेहद खूबसूरत पर्दे और एक बड़ा सा बेड जैसे राजा महाराजाओं का होता है, सेम वैसा बेड उस कमरे में था। और उसी बेड के ठीक सामने एक बड़ा सा सोफा था। वो कमरा वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। खैर, अरहम ने ज़ोया को बेड पर लिटा दिया और उसने नर्स को ऑर्डर दिया, इसको चेक करो और दवाई दो। नर्स ने हाँ में सर हिला दिया और अरहम ज़ोया को नर्स के साथ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। नर्स ने ज़ोया को अच्छे से चेक किया। मैडम, अब आपको कैसा लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ज़ोया मन ही मन सोच रही थी, प्रॉब्लम तो इतनी है तुम सोच भी नहीं सकती हो। ज़ोया कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस चलते हुए थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। नर्स कहती है, मैडम आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, आपके शौहर की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो नर्स अरमान ठाकुर को ज़ोया का शौहर समझ बैठी थी। आपका ब्लड काफ़ी रेयर था, कहीं भी नहीं मिल रहा था, सो सर ने इनाम रखा था कि जिस भी किसी का ब्लड ओ नेगेटिव होगा और वो ब्लड डोनेट करेगा, अरमान सर उसे पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे। तो बस मैम, फिर क्या था, जितने भी शहर में ओ नेगेटिव वाले आदमी थे वे सभी हॉस्पिटल में आ पहुंचे थे। सो जो आदमी सबसे ज्यादा हेल्दी था उसी का ब्लड सर ने आपको चढ़वाया था और उस आदमी को पूरे 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। वो नर्स बड़ी आराम से सारी बातें ज़ोया को बता रही थी, जबकि उसे डॉक्टर ने साफ मना किया था कि तुम किसी से कोई बात मत करना, ये अरमान साहब के सख्त इंस्ट्रक्शन थे। ज़ोया हैरानी से ये सब बातें सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर क्यों उसकी जान इतनी कीमती है इन दोनों भाइयों के लिए, वरना कौन ऐसा करता है किसी के लिए, आखिर क्या बात हो सकती है। एक बार फिर ज़ोया को काफ़ी सारे सवालों ने घेर लिया था।